গঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বান সুখে দেবী প্রণামামি সপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বান সুখে দেবী প্রণামামি হরি প্রিয়ে হা দেবী কাবেরী ভূমি দন্তবন্ধুপটালি
पहले श्लोक में उन्होंने बतलाया कि गुरु के प्रति गोष्ठ के प्रति ब्रजवासियों के प्रति सूजन गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसके प्रति और गुरु जी ने जो हरि नाम दिया उसके और राधा कृष्ण के युगल के शरण में सब प्रकार से मन रहा यदि भजन करने की एक विषय को अच्छी तरह से विस्तृत करके हमने बताया। अब दूसरा श्लोक बोल रहे हैं न धर्मं ना धर्मं खुद गुण निरुक्तम किल करो ब्रजे राधा कृष्ण करूँ सखी सुन नंदीश्वर गुरु परम मुकुंद कृष्ण स्मरण सामजस्व इस श्लोक में वो बता रहे हैं कैसे कर्म करना है। नाउ वी टेलिंग इन दिस श्लोक हाउ अ थियोर डिवोटी शुड बिगिन हिज भजन साधन अंदर। पूर्व श्लोक में राधा कृष्ण जुगल की सेवा करने की बात कर इन द लास्ट श्लोक इन द फर्स्ट श्लोक ही हैज टोल्ड हाउ टू डू आराधना ऑफ राधा कृष्ण जुगल उन्होंने बतलाया कैसे करना चाहिए। सब दम को छोड़कर के जितने अनर्थ हैं ये सब को छोड़कर के उनके भजन करने की बात बतलाई है। अब उसमें एक शंका होती है, शंका ये होती है संपूर्ण रूप से दम्भ का हम त्याग कर दे तो हमारा जीवन निर्वाह भी संभव पर नहीं
है।
दम्भ का प्रत्याग करने से यदि कृष्ण भक्ति का अनन्य रूप में हम ग्रहण करते हैं कोई भी चेष्टा संसारिक जीवन निर्वाह के लिए नहीं कृष्ण भजन करने के लिए करते हैं तो जीवन का निर्वाह कैसा होगा, तब तो आदमी मर जाएगा तो फिर कैसे भजन करें। संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करना जरूरी है। नित्य नैमित्तिक कर्मों में ये बतलाया कि दैव वर्णाश्रम का बतलाया वेदों में उपनिषदों में बहुत तरह से इन चीजों को बतलाया। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भजन करने की यदि लालसा है तो न धर्मम ना धर्मम सुति गुण निरुत्तम कुलु कुरु। यदि भजन करने की लालसा है तो वेदों में श्रुतियों में उपनिषदों में स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वो सब को छोड़ करके धर्म और धर्म एकांतिक रूप से राधा कृष्ण का भजन। रघुनाथ दास गोस्वामी इज टेलिंग दैट व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन श्रुति एंड स्मृति उपनिषद all Purans, you will have to give up all these things totally. What is called a dharma and dharma. And you will have to take shelter of only Radha Krishna Ananya Upasana. Kintu, jadi hum log aisa karte hain, nitya aur namitik hum chhod dete hain, to jivan ka nirvah bhi kathin ho jayega. Bahut se isme dosh honge. तो हमको क्या करना चाहिए। जो हमारे जीवन यात्रा के लिए सुगम है जो नियम जो हमारे लोक और परलोक में हमारे लिए लाभदायक है उनको कहते हैं धर्म। उनका नहीं करने का नाम अधर्म है, इसके विपरीत करने का नाम विधर्म है। अधर्म और विधर्म कुकर्म तो हम नहीं करेंगे किंतु धर्म तो हम करेंगे। धर्म भी स्थितियों में बहुत प्रकार के अधिकार के अनुसार में बनाए गए हैं। कर्म का एक अधिकार है, ज्ञान का एक अधिकार है, भक्ति का एक अधिकार है। सब अधिकारों को छांट कर इन सूति एंड बेस बट दे हैव एक्सप्लेन दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स according to their qualification, karma, gyan aur bhakti. Aur iske liye batlaya hai, tavat karmani kurvita nanirvitte yavata. Jaise pehle kaha vedo mein, anusa parmo dharma. Anusa parmo dharma. फिर बतलाया माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, पितृदेवो भव मातृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव ये सब बतलाया। ये नहीं करने से जीवन निर्वाह नहीं होगा, कुछ कर्म भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्म करने के लिए साधारण रूप में सबकी प्रवृत्ति लगी रहती है, किंतु कहते हैं तावत कर्माणि पूर्वित न निर्वेद्येत जा। कर्म तभी तक करो, कर्म में लोगों का अधिकार तब तक है, न निर्वेद्येत जावता, जब तक कि उसके फलों को भोग करके उसमें निर्वेद ना जाए। संसार में कोई भी अच्छा कर्म भी ऐसा नहीं है जो सब काल के लिए सुखदायी हो, जरूर उसका अंतिम परिणाम दुखदायी होगा। विवाह सुख के लिए करते हैं किंतु ये भी दुखदायी हो जाता है, धन इत्यादि हम संग्रह करते हैं किंतु ये भी दुखदायी हो जाता है। इसलिए धन और धन से पाए जाने वाले जितने भी संसारिक सुख हैं, कर्मों का फल है, वो सब दुखदायी है। परीक्षा परीक्षा
कर्मचितान
निर्वेद माया कृष्ण कहते हैं निरीक्ष
परीक्ष लोकान
परीक्ष
लोकान
लोकान
कर्मचितान
कर्मचितान तात्पर्य ये क्या है? परीक्षा करके देखो संसार में कर्म और कर्म का फल दोनों ही अंत में दुखदायी होता है, इसलिए परीक्षा करने के बाद में तुम देखेगा कि ये संसार के जितने कर्म और कर्म फल हैं ये दुखदायी हैं। द्रौपदी और पांचों पांडव लोग कृष्ण के कृपा पर निर्भर रहते थे, उनकी कितनी उनको कितना दुख हुआ। महाराज हरिश्चंद्र का भी देखो, ये धर्म पथ पर थे तभी तो संसारिक लोगों की तो बात किया, इसलिए इस पर अच्छी तरह से विचार करके देखो तो ये दुखदायी। ऐसा करके यदि किसी को निर्वेद हो जाए तो उसका कर्म मार्ग समाप्त हो जाता है, वो कर्म का अधिकारी नहीं है, वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। ज्ञान में जब हम विचार करके चलते हैं, शास्त्रों में विचार करके जो ज्ञान के संबंध में बतलाया गया उसे देखते हैं कि उसमें यथार्थ सुख नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो जीरो है, वो तो भगवान उसमें कुछ माना ही नहीं गया, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, वो निराकार निर्गुण निरंजन, उनमें कोई गुण नहीं, इसलिए वो शून्य है, उसमें सुख नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान की कथाओं को सुनने से उनको भगवान के प्रति जो स्वाभाविक रूप में भजन करने की लालसा उत्पन्न होती है, यदि ऐसा हो जाए तो तत्क्षणात् कर्म और ज्ञान दोनों को छोड़ो। But Vedas has explained, it has been divided into three, कर्म ज्ञान एंड भक्ति। Only these are three ways. Those who are suffering from worldly things, they should, when they have become like Nirved, I don't want to suffer in this world,
disinterested,
then they are out of karma. And by hearing past times of Krishna, Srimad Bhagavatam everywhere, they have some ruchi in Harikatha, then they may give up karma and gyan both, and they are qualified for bhakti. तो यहाँ पर वही बतला रहे हैं, जब तक आदमी कर्मों के फलों से निर्वेद नहीं प्राप्त कर जाता तब तक कर्म करो, और यदि निर्वेद हो गया तो कर्म को छोड़ो, और जिस समय में भगवान की कथाओं सुनो और उसमें भगवान की कथाओं में रुचि हो जाती है, भगवान की सेवा में कुछ रुचि हो जाती है, तो ये ज्ञान भी छोड़ करके भगवान का भजन। और भी आगे बतलाया मैंने वेद और उपनिषदों में आज्ञाएं दी है मनुष्य के लिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या गुण है क्या दोष है, और विचार करके उनके अनुसार में मैंने बतलाया है। यहाँ कहता है कि दोनों को छोड़ करके मेरी आज्ञाओं को, जो छोड़ करके हमारा भजन करता है वही यथार्थ में उत्पन्न व्यक्ति। इसलिए गीता में स्पष्ट करके बतलाया सर्वधर्मानुपत्यज्यमान एकम शरणम व्रज अंतम सर्व पाप मुक्तेश्यामि। सबको छोड़ो और हमारे शरणागत में आ जाओ, जीवों का यही सबसे बेस्ट फल है कि शरणागत होकर के भगवान का फल। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं रेमन वेदों में जो लिखा गया धर्म और अधर्म सबको छोड़ो, इसे तुम्हारा स्वरूपानुबंधी कोई भी कल्याण नहीं होगा। इनको छोड़ो और छोड़ करके ब्रज राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि हतम। ब्रज में जो राधा कृष्ण है किसको कारण अपने मन को, उनका मन कैसा है, उनको स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलने के कारण राधा कृष्ण में उनको भजन करने की रुचि नहीं बल्कि लोभ उत्पन्न हो गया है बचपन से ही। इसलिए हम अपने मन के द्वारा समस्त विश्व के ऐसे व्यक्तियों को जिनको भगवान के भजन में लोभ उत्पन्न हुआ है उन लोगों के लिए कारण, साधारण वैदिक भक्ति का इसका उद्देश्य नहीं है, प्रारंभ से उनका वो उद्देश्य वहां ले जाना चाहते हैं रागम का भक्ति की तरफ। जो लोग रागानुगा भक्ति है इतना भजन करके भी चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को सुन करके भी जिनको इधर में रुचि नहीं हुई लोभ नहीं हुआ वो संसार में दुर्भागा से भी दुर्भागा है। चैतन्य महाप्रभु इज परित रूप एंड सनातन स्वरूप दामोदर एंड ऑल एंड दे आर नो ए वेरी लीन एंड थिंग ग्रीव देन दे आर शॉर्ट एंड लीन They are
unfortunate,
not unfortunate, but unfortunate to the extreme unfortunate. Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita it has been told. ये कहा गया। प्रेमामृत चैतन्य महाप्रभु लीलाते वह प्रेमामृत का बन गया कि चैतन्य महाप्रभु स्पेशली इन इंडिया एंड दे हैव कम इन कांटेक्ट ऑफ रूपानुग वैष्णव चैतन्य महाप्रभु इन कांटेक्ट एंड दे हैव नो ग्रीड टू सर्व राधा कृष्ण like Rupa Goswami order, then they are so unfortunate person. They are more unhappy and niche than animals also. Because Chaitanya Mahaprabhu has come to only to give these things. तो उनके समान जगत में और कोई दुर्भागा नहीं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं सबके लिए ये जीव मात्र का उसमें अधिकार है, सब कृष्ण के ही दास है, जीव स्वरूप है इसलिए सबका उसमें स्वरूप में अधिकार है। इसलिए कहीं कहीं पर मना किया गया है दशम स्कंद आलोचना, कहीं लिखा नहीं गया। कहते हैं हमारे आचार्य किन लोगों के लिए जो पशुवत जीवन निर्वाह करते हैं, शिक्षा में रघुनाथ दास ये कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि हतम। व्हाई ही इज टेलिंग सो राधा कृष्ण प्रचुर, व्हाट इज कॉल्ड प्रचुर सेवा, क्या कहा जाता है किसको प्रचुर सेवा किसको कहते हैं, रूप गोस्वामी ने इसका सुंदर रूप से वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में भी किया। विशेष करके रूप गोस्वामी ने यह बतलाया ना सेवा सिद्ध रूपेण साधक रूपेण च सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप सुना गाज्या ब्रजलोक अनुसार तब वही ही टोल्ड है तो फॉर हुम इट हैज बीन टोल्ड ए मैन कैनॉट A devotee cannot live in same class for thousands and thousands of years. If there is no progress, then what to tell? इसलिए भगवान का भजन करेगा, चैतन्य चैतन्य पढ़ेगा और इन सब चीजों को पढ़ेगा और भगवान का उस भजन के तरफ में उसकी रुचि नहीं जाएगी, ऐसा कैसे आप कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जो ऐसा कहते हैं सचमुच में दया के पात्र अनिर्भोग है, मैं तो यही कहूंगा। उनका जीवन का लक्ष्य ही नहीं कुछ हुआ। राधा कृष्ण की लीला नहीं सुनेगा तो क्या सुनेगा? चैतन्य महाप्रभु और ये सब लोगों ने क्या बतलाया, इसलिए उसमें सुनेंगे हम। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि हतनु, इस शब्द सुनने के लिए पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं अपने मन को दिया अबोध मन, तुम राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा करो। प्रचुर सेवा माने क्या? दिन रात जी की सेवा। कैसे सेवा करो? इसके लिए उन्होंने हरि भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि से ये सब भक्ति करो। कैसा? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनापितम अनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। ये एकदम पहले श्लोक में ही हमारे रूप गोस्वामी निंदित है। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? उत्तम। अन्य अभिलाष छोड़ दिया, ज्ञान कर्म भी छोड़ दिया, अनुकूल रूप से वो सेवा कर रहा। कृष्ण की अनुकूल रूप से क्या सेवा करेगा? व्हाट ही विल डू? He has left annabhilashita, gyan karma everything, and ankullena he is doing service to Krishna. But what seva? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रचुर सेवा। प्रचुर सेवा के लिए उन्होंने अपने खुद ही लिखा है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी जी के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की। और साधन हम लोगों का हर भजन करने का यही उद्देश्य होना चाहिए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया। सनातन गोस्वामी ऐसे कृपालु हैं, हमारी इच्छा नहीं थी कि हम प्रेम भक्ति पाए, किंतु उन्होंने वैराग्य देखो, भक्ति रस का हमारे मुख में जोर से ढाल दिया। हम नहीं लेते थे किंतु जबरदस्ती, क्योंकि मैं अज्ञानी था। ऐसे परम कृपालु जो सनातन गोस्वामी है, क्या दिया? क्या बृहद भगवतामृत में क्या दिया? कोई साधक होगा इन कथाओं को सुनेगा नहीं और ऐसी लालसा नहीं होगी जैसे गोप कुमार का हुआ, नारद जी का हुआ, हमारा भी हो। इफ एनी वन हियर्स बृहद भगवतामृत ऑफ सनातन गोस्वामी, विल ही हैव नो मूड टू फॉलो गोप कुमार एंड टू सर्व हर डाइन कृष्ण देयर? जरूर होगा, नहीं हो जब तक पढ़ाई क्या। इसलिए बतलाया जैसे कैसे हमको करना चाहिए, श्रद्धा से आरंभ करते हुए जैसा कि उन्होंने बतलाया, श्रद्धा निष्ठा रुचि, यहाँ तक हुआ वैदिक भक्ति का अधिकार, बस यहीं तक। किंतु हो सकता है कि रागानुगा यदि भक्त हो तो वैसा हुआ किंतु उसकी श्रद्धा दूसरी तरफ में चलेगी, उसकी निष्ठा दूसरी तरफ की होगी, एक तरफ की नहीं होगी। और ये अधिकांश रूप में रुचि या आसक्ति से ये रागानुगा होती है, क्योंकि लोग हैं ना थोड़ा, इसलिए। और बहुत जल्दी से ये प्रोग्रेस करने वाली ये भक्ति होती है। इसलिए प्रचुर परिचर्यामि हतम्, प्रचुर सेवा करो। प्रचुर सेवा कैसे होगी? यदि कोई भक्त स्वामी सिंधु नहीं पढ़ा, उसका अनुशीलन नहीं किया, उसकी कथा नहीं सुनी, हमारे गोस्वामी लोगों की बातें नहीं सुनी, चैतन्य चैतामृत नहीं पढ़ा, आदि चतुर्थ को चैतन्य चैतामृत से निकाल दो, रह क्या जाएगा? रामानंद का संवाद निकाल दो, चैतन्य चेतामित क्या रहेगा? तो ऐसे लोगों को ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत न पढ़े, कोई कहते हैं कि श्रीमद् भागवत दसवें स्कंध मत पढ़ो। Anyone tells that, any acharya tells that we should not read dasam skanda Srimad Bhagavat. I ask them that in first sloka, first canto of Srimad Bhagavatam, Satyam Paramadhimahi, it is full of Radhika praying, and it is only for Radhika, then they should not utter this sloka and they should not read all these things. Nigam kalpata rogalita mukhalam. क्या है दसम स्कंद पूरा उसमें ढाल दिया गया है, इसका अतिरिक्त भी जो उसमें और लीलाएं नहीं है वो भी उसमें। जब परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया, कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने ऐसे अधर्म क्यों किया जो दूसरों की स्त्रियों के साथ में राश किया और उनके साथ में नित्य किया, ये तो उचित नहीं है, तो बिगड़ गए। कहा जिससे क्या कहा उन्होंने? अरे तुमको पहले मैंने बतला दिया,
उत्तम गुणस्था
यदि क्रोध और कामना से ही लोग उनको पा जाते हैं, द्वेष से भी उनको पा जाते हैं, तो फिर काम के द्वारा और ऐसे प्रेम के द्वारा क्यों नहीं उनको पा सकते हैं? और उनका मूड खराब हो गया, वो चाहते थे रासलीला के बाद में और भी सुंदर सुंदर चीजों को, होली का लीला है और झूलन का लीला, ये सब वर्णन नहीं किया, उनकी इच्छा थी जो वर्णन करें, किंतु देखा ये लोग अयोग्य पात्र है और यहाँ करने वाले सब अयोग्य हैं, इसलिए उन लोगों का वर्णन किया। इसलिए हमारे गोस्वामियों ने कृष्ण भावनामृत में, गोविंद लीलामृत में, रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में इन सब चीजों का वर्णन किया। इसलिए जो अनाधिकारी हैं वो खुद ही नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए शपथ है जो वो लोग न पढ़े, किंतु जिसको थोड़ी सी भी रुचि है वो जरूर पढ़ेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत के ये पहले श्लोक में ही दूसरे श्लोक में निगम कल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादं द्रवसंयुतं, इसमें क्या नहीं बाकी रह गया है, केवल व्याख्या बाकी है, सूत्र रूप में सभी कुछ उसमें भर दिया। उद्धव जी का मैं उनके साथ में, विदुर के साथ में या मैत्रेय विदुर के साथ में बातचीत हो रही है जमुना के किनारे, कहीं उद्धव वहां से आए हैं, रो रहे हैं, और कृष्ण लीला का वर्णन एक एक श्लोक में करते हुए अपने रोते हैं, उनको भी रुला रहे हैं। उसमें श्री भागवत नहीं है दसम स्कंद, एकादश स्कंद में गोपियों के लीला चरित्र नहीं है, श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें दसवें स्कंद नहीं आया है किसी न किसी रूप में। इसलिए उन लोगों को बल्कि शपथ होना चाहिए, वो लोग भी ये जो नौम और नौम के बाद में दसम नहीं पढ़ेंगे, उन लोगों के लिए तो एकदम पहले से भी अंत तक कोई भी श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं है, चैतन्य चैतामित छूने के तो अधिकारी ही नहीं है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी किसके लिए ये लिख रहे हैं? प्रचुर राधा कृष्ण
रूपमंजरी
मुखाप्तदासिका संशयहं, ये किसके लिए कहा? इसके लिए भक्तों के लिए तो कहा, ये सब सेवाएं नहीं जानने से कैसे श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ेगा, ये कैसे आएगा? किंतु हाँ, अधिकार की जरूरत है, पहले इन सबको श्रद्धा निष्ठा इत्यादि हो, इसके बाद किंतु हमारा उद्देश्य ही नहीं रहेगा, और जन्म जन्मांतर में कोई भी व्यक्ति इसके श्रवण करने का अधिकारी हो ही नहीं सकेगा, तो उन लोगों के लिए लज्जा की बात, वो भी लोग हैं, यदि यह योगी नहीं हुआ तो। इसलिए ये कह रहे हैं सनातन गोस्वामी की शिक्षा में ये बतला रहे हैं, बाह्य और अभ्यंतर में दोष होता हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, बाहर से साधक शरीर से श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद से मन सब करो, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास से मुक्ति सप्ताह, ये बात और जिनको रोग है वो अंतर रूप में राधा कृष्ण के लीला अवकाश होंगे। अभी कल परसों ही हमने श्लोक बतलाया था, तन्नाम चैतादि सुकीर्तनाम क्रमेण रसनाम शीतियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी। वृंदावन में बैठ करके, वृंदावन में क्यों बैठो, दशम स्कंद हम नहीं पढ़ेंगे, किंतु वृंदावन में रहने से दशम स्कंद पढ़ना नहीं हो जाएगा, सेवा कुंज में जाएंगे उनको प्रणाम करने के लिए, किस लिए, जंगल झाड़ संसार का समझ करके करेंगे, न तो कृष्ण की राधा कृष्ण की गोपनीय लीलाएं जो कि श्रीमद् भागवत में भी वर्णन नहीं किया गया उसका वर्णन किया गया है, भागवत पढ़ना नहीं हो गया, दशम स्कंद रासलीला इत्यादि नहीं पढ़ हुई, निधुवन किस लिए है, चिरघाट यहाँ पर है, चिरघाट में क्या हुआ, दशम स्कंद जब वहां पर जाएंगे कल आप लोग परिक्रमा में, तो चिरघाट में नहीं जाएंगे ना वो लोग, न क्या करेंगे वो लीलाएं सब आप नहीं आएंगे, गिरधर में गिरधर गोवर्धन में जाएंगे, वो चंद्रशौर में जाएंगे, पैठा में जाएंगे, राधा कुंड में जाएंगे, किस लिए राधा कुंड में जाएंगे, तुम राधा कुंड में किस लिए जाना चाहता है, व्हाई यू वांट टू गो टू राधा कुंड, व्हाई व्हाई यू आर टेलिंग दैट राधा कुंड इज सो हायर, किस लिए कर है कि तब लोग हम लोग के गुरु जी ने या और सब लोगों ने केवल अधिकार ज्ञान की बात करते थे, किंतु एकदम पढ़ो ही नहीं, सदा के लिए बंद कर दिया वो अध्याय ही, ऐसा मत भजन करते करते वो लालसा आएगी, यदि लोग आया तो इसके अनुसार गुरु रघुनाथ की तरफ में चलना, इसलिए कहते हैं बाहरी और भीतर से इसके दो साधन है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ साधन, वन फॉर साधक शरीर एंड वन फॉर चित्त शरीर, जीव का तो स्वरूप है ही है वैसा, फिर कहते हैं यदि वैसा भजन करना चाहते हो तो सची सुनो नंदीश्वर पति सूत स्मरण, भजन करना चाहते हो तो सची पुत्र को सची नंदन को जसोदा नंदन समझो, ओ जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को तुम नंद बाबा का पुत्र समझो, सची सुनो मैया बड़ी दयालु है, इन्हें चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं, बड़ी वो कृपा करने के लिए ही गुरु वृंदावन से यहाँ पर पधारे हैं, इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु को ही राधा कृष्ण उनको नंदीश्वर पति सुतत्वे, नंदीश्वर माने नंदीश्वर नंदगांव, और उनके पति हैं नंद बाबा और उनके पुत्र हैं कृष्ण नंदनंदन हुए, सची नंदन को नंदनंदन समझो, इसलिए समझो अनर्पितरिं चिराग करुणया अवतीर्णः कलौ, अनुग्रह करने के लिए वो भाव देने के लिए आए हैं और स्वयं राधा भाव प्रसादन करने के लिए आए, परम दयालु हैं, जिधर वो देखते हैं उधर ही प्रेम दान कर देते हैं, यदि कोई पशु पक्षी भी उनके सामने आए तो उनका वो कर्ण मुखार में देख करके अपनी दृष्टि से दिखला करके और उनमें प्रेम, जहाँ दूर दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम,
एमन दयालु प्रभु नहीं थी वने कृष्ण प्रेम जन्मा जाए दूर दर्शन,
चैतन्य महाप्रभु झाड़ी खंड में जा रहे हैं, पशु पक्षी कीट लता पतंग सबको उन्होंने प्रेम दान कर दिया जो कि दूसरों के लिए संभव नहीं, कृष्ण ने बहुत ज्यादा कदा ऐसा दिया, कृष्ण ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा किया, वो देने के लिए आएंगे, आए उनको यहाँ पर भजन करने के लिए कहा जा रहा है, उनको सची नंदन को ही नंदन नंदन समझो, इसका कारण क्या है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं देखो संसार में फंसे हुए मनुष्यों के लिए हरिनाम के बिना और गति नहीं है, विशेष करके कलि और बिना सत्संग के ये भी हो नहीं हो। इसलिए चैतन्य महापुरुष सत्संग देने के लिए खुद और उनके जितने भी परिकर थे वो सब तो लेकर के राधा जी को गदाधर बना लिया, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद को ललिता विशाखा बना, उसमें अष्ट सखियां मंजरियां जो भी थी सब उनके साथ में आए और अपना संग सुलभ किया। प्रहलाद महाराज और इनको ब्रह्मा जी को मिला करके हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु स्वयं आए और महाप्रभु का वाणी और ये नाम कीर्तन सब जगह उन्होंने प्रचार किया। विशेष करके जब वो जगन्नाथपुरी में गए तो वहां पर उन्नत उज्जवल प्रेम स्वयं आस्वादन करने के लिए और उसका छीटा उसकी शोभा जगत में वितरण करने के लिए वहां पर गंभीरा में रख करके आस्वादन किया। वो असमर्थ श्री राधा भाव माधुरी रसास्वादन करने के लिए नंद नंदन के रूप में हुआ है कौन चैतन्य महाप्रभु और उसका छीटा शोभा जिसको मंजरी कहते हैं मंजरी भाव जगत में उन्होंने प्रदान। अब ये चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण में कोई भेद ना हो जाए, बिना चैतन्य महाप्रभु के भजन के राधा कृष्ण में भजन नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना चाहिए, राधा कृष्ण को हम पूजा करें ना गौचंद्र को, किंतु शास्त्रों ने कहा अनन्य भजन होना चाहिए, एक का भजन होना चाहिए, या तो राधा कृष्ण का करो या चैतन्य महाप्रभु का, तो फिर चाहिए हो गया अनन्य भजन नहीं होगा, क्या करें हम लोग उसके लिए ये प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं कि केवल मात्र राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूजा हम करें महाप्रभु जी की ना करें। कोई कहता है कि नहीं केवल महाप्रभु जी का भजन करने से ही राधा कृष्ण का भजन करना हो जाएगा, इसलिए संदेह होता है कि क्या हम भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नौदीप धाम परिक्रमा में जैव धर्म में इस सबका प्रश्न का उत्तर दिया है। जब आए थे भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे ही विडंबना चल रही थी, कोई निश्चित नहीं कर पा रहा है, कोई महाप्रभु जी को ही राधा कृष्ण जब है मिली तो वही हमारे नागर हैं, मैं उनकी नागरी हूँ ऐसा प्रश्न कर, हम कृष्ण की सखी हो सकती हैं, राधा जी की सखी हो सकती हैं सहेली और कृष्ण के हम राष्ट्र में पहुंचेंगे तो महाप्रभु भी राश करें और हम उनकी सखी होकर के उनके राश में मिलित हों, इस प्रकार से उनका भजन करें। इसको कहते हैं गौ नागरी बात, हमारे समस्त रूप गोस्वामी से लेकर के विशेष करके कवि कर्णपुर जी ने हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने इस सबका खंडन किया। गौ नागरी बात महाप्रभु को अभी नहीं है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने और उसका खंडन किया। हमारे प्रभुपाद जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी इसका खंडन किया, ये ऐसा भावना नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं उनमें से हम कौन करें, साधक ऐसा सोचेगा, अथवा राधा और कृष्ण की दोनों जगह हम अलग अलग उपासना करें। सहजिया लोग कहते हैं आप लोग गौ नित्यानंद जी का भजन नहीं करते, आप लोग केवल महाप्रभु जी को मानते हैं नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, किंतु ये सब रस का विचार उनको ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं। हम लोग के मंदिर में बहुत जगह में नित्यानंद प्रभु और गौ नित्यानंद प्रभु दोनों कहा और कहीं कहीं पर महाप्रभु को राधा कृष्ण और महाप्रभु दोनों एक हैं, इसलिए यहाँ पर रखा, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए जब भजन हम करेंगे उसी के उत्तर में ये बतला रहे हैं, शंका का समाधान करते हैं, जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भक्त भाव से अवतीत होकर के स्वयं उपदेश दे रहे हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा है, पर चैतन्य महाप्रभु हैज टोल्ड, ही हैज टोल्ड टू सर्व राधा एंड कृष्ण युगम, उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण युगल की तुम सेवा करो और कृष्ण का नाम करने के लिए कहा विजयते श्री कृष्ण नयन गलदास सुधारया बदन गद गद रुद्धया गिरा कुल कर विचितम बपुह पदार्थ नाम ग्रहणे, नाम ग्रहणे माने ये हरि नाम के लिए कहा, कृष्ण नाम के लिए कहा, उन्होंने अपने के लिए कुछ नहीं कहा। तो चेतन महाप्रभु को हम छोड़ दें ना कि उनको ही कृष्ण के रूप में पूजा करें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो जीवन सेवा करने से पहले महाप्रभु जी का स्मरण कर लिया करो, जे ये जुगल ही राधा कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु, ऐसा स्मरण करो और उनसे प्रार्थना करो जे आप राधा जी का भाव लेकर के करुणा करके जगत को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए। इसलिए आपका पहले मैं स्मरण करता हूं, आप ही राधा कृष्ण, ऐसा स्मरण करके और तब फिर राधा कृष्ण की सेवा करो। पहले चैतन्य महाप्रभु जी की हो जाए और स्मरण करके, और महाप्रभु ने जो जो उपदेश दिया वैसे उन्होंने आगे ये भी बतलाया, गुरु को भगवान समझ करके साक्षात खरीदते न समझ कर, और गुरु को हमारा स्वरूप ही समझो। क्या वो श्लोक आचार्य को दूसरा मत समझो, हमारे चैतन्य चैतामृत ने भी कहा गुरु को दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को हमारा स्वरूप समझ करके उनकी प्रचुर परिचर्या, ये सब बतला। तो गुरु जी की सेवा करें, गुरु जी की सेवा करने से कृष्ण की सेवा हो जाएगी। तो गुरु जी की ही हम भजन करें, कृष्ण को जरूरत क्या है, दोनों अभिन्न है तो नहीं, ये पास अंतरता है। गुरु जी का स्मरण करो, गुरु जी की सेवा करो और कर करके उनकी कृपा से राधा कृष्ण की सेवा में लगो, यह है गुरु। वहां पर अभिदत्त किस लिए कहा गया, प्रियत्व हेतु से, शंकर जी शिव जी या गुरु जी उनके अत्यंत प्रिय है, इसलिए भेद बतलाया गया, भेद मत रखो। किंतु जैसे कृष्ण में भक्ति है, भगवान में भक्ति है, उससे भी अधिक गुरु जी में तब तो भक्ति होगी, राधा कृष्ण की सेवा होगी, अन्यथा सेवा नहीं होगी। इसीलिए ऐसा करते हैं कि गुरु यदि राधा कृष्ण का उपासना करते हैं, उनका नाम लेते हो, तो महाप्रभु को पहले स्मरण करो। किस रूप में स्मरण करो, आप ही तो राधा कृष्ण है, इस रूप में महाप्रभु जी की दास रस में सेवा की जाए। सेवा करते 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 जब उसकी पुष्टि होगी माने परिपक्व अवस्था आएगी, तो वही महाप्रभु ही राधा कृष्ण के रूप में उसको दर्शन देते हैं, वही अलग से नहीं उसी में दर्शन देते। तब फिर उसको सख वात्सल्य या मधुर रस किसी में एक में रुचि होकर के वो आगे आगे बढ़ता है। और महाप्रभु का स्मरण ही नहीं किया जाए तो भजन ही नहीं हो सकता है, इसलिए इनका भजन करना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु की स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र सेवा बुद्धि करने से कुछ यदि हम पूजा करें तो गौ सुंदर और कृष्ण में अभेद बुद्धि नहीं रह सकती अलग अलग करने से, इसलिए अलग अलग मत करो। अभेद बुद्धि होने से कृष्ण की सेवा पूजा में ही श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मृति बनी रहती है। इसलिए महाप्रभु जी की सेवा करेगा तो राधा कृष्ण की हो जाएगी, और राधा कृष्ण का करेगा तो अभेद दृष्टि से करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी को स्मरण करने के लिए बतलाया। दूसरी बात गुरु के संबंध में बतलाया कि मुकुंद का अत्यंत प्रिय समझना चाहिए गुरु को, इसलिए उन्होंने बताया प्रथम तो गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्चनं कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति हि अन्यथा निष्फलं भवेत्। पहले गुरु जी की पूजा होनी चाहिए, गुरु जी को इन्होंने बताया जो कैसे होना चाहिए साधक शरीर में, और जब तक लोभ नहीं हुआ तब तक जिस रूप में देख रहे उसी स्वरूप में उनकी परिचर्या करो, और उनकी परिचर्या कैसे करो, विषम में न गुरु सेवा विषम भाव, डर भय मत करो। डर किसको होगा, डर किसको होगा, जिसने कमी है, जिसने संपूर्ण से आत्मसमर्पण कर दिया है। सिंह के बच्चे को सिंह से डर नहीं लगता, किंतु हाथी जैसे बड़े भयंकर जानवर को भी सिंह से भय लगता है, किंतु उसका बच्चा हो जाने पर उसको भय नहीं लगता। इसलिए डरने की बात नहीं, अपना परम बंधु अपना परम हितकारी उनको समझ करके उनकी सेवा करनी चाहिए। कल उसके संबंध में हमने बतलाया कि किंतु उसमें एक बात है, जिस प्रकार से शंकराचार्य के शिष्य को मैंने बतलाया था, बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो सेवा करते हैं अपने गुरु, किंतु उनका ध्यान रहता है गुरु जी के तकिए के नीचे या पॉकेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, उधर उधर में दृष्टि न रहे, नहीं तो सभी चौपट हो जाएगा। इसलिए ऊपर से सेवा करते हुए भीतर से भी आंतरिक सेवा की भावना रहे, जो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, मैं उसका उत्तराधिकारी बनूं और इसको ग्रहण करूं। अन्यथा बहुत से लोगों को देखा है जो ऐसे ही सेवा किया, हरिनाम नहीं किया या कम किया, पाठ इत्यादि गुरु जी के उपदेश नहीं सुने और सेवा इतना किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और उनकी आयु दुर्दशा हो, गुरु जी से पैसा लेकर के जमीन खरीद लिया और अब गुरु जी का प्रश्न जा करके घर में उसी भोग विलास में लगते, इसलिए ऐसा नहीं। इसलिए जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने गुरु की सेवा की, जैसे गोविंद जी ने अपने गुरु जी की सेवा की, जैसे और हमारी परंपरा में आ रहा हमारे नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने गुरु की सेवा की, जैसे श्यामानंद प्रभु त्रयनेन्द्र जीव गोस्वामी की सेवा की।